समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं एक बार फिर से लेकर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा। कार्यक्रम में होंगे अब तक के मुख्य समाचार, साथ ही चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार।
नमस्कार करिश्मा, एंड हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। विद ऑल द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस, द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज स्टेडिली रीशेपिंग द हार्ट ऑफ न्यू दिल्ली, एंड द लेटेस्ट एडिशन टू दिस इज विल बी द कर्तव्य भवन, विच इज ऑल सेट टू बी इनॉग्रेटेड वेरी सून, विच इज गोइंग टू हाउस द यूनियन होम मिनिस्ट्री, द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, streamlining the administrative processes. This makeover is the centerpiece of PM Modi's bid to leave a new architectural legacy, a contrast to the previous mix of colonial era architecture. And we are all looking forward to all the new changes coming up in the national capital. Here we are with a fresh new episode of Parikrama for you. Let's begin with what's making news at this hour of the day. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with President Marcos Jr. of Philippines in New Delhi, says India-Philippines agreed to elevate ties to strategic partnerships.
भारत और फिलीपींस ने रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, समुद्री सहयोग, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में 9 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विटनेसेस disruption by opposition parties over special intensive revision conducted in Bihar.
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा सुधारों की सराहना की।
एंड IMD forecasts extremely heavy rainfall over Kerala and Ghat areas of Tamil Nadu till tomorrow. And Karishma, now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about Pariksha Pe Charcha, which has a Guinness World Record now. Prime Minister Narendra Modi's flagship initiative, Pariksha Pe Charcha, has been conferred with the Guinness World Record for the most people registered on a citizen engagement platform in 1 month. This recognition is a testament of achievement made with 3.53 crore registrations during the 8 editions of the program hosted on the MyGov platform. Pariksha Pe Charcha is a unique platform conceptualized and led by Mr. Modi, wherein the Prime Minister directly interacts with the students, teachers and parents.
तो कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में आधिकारिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
Right, and speaking on the occasion, Mr. Pradhan said that Pariksha Pe Charcha has been redefined as a national approach to examinations by turning stress into a festival of learning under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. He said 8 editions of Pariksha Pe Charcha witnessed more than 21 crore viewership across all media platforms in this year 2025.
इस अवसर को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने परीक्षा पे चर्चा को एक अनूठी पहल बताया जो छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को एक साथ लाकर उनके स्वास्थ्य और तनाव मुक्त शिक्षा को बढ़ावा देती है। उन्होंने समृद्ध काल में छात्रों के लिए उपलब्ध करियर के व्यापक अवसरों पर भी प्रकाश डाला और कहा कि सबसे ज्यादा पंजीकरण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इस पहल में जनता के मजबूत विश्वास को दर्शाता है।
राइट, एंड सिंस इट्स इंसेप्शन, परीक्षा पे चर्चा हैज इवॉल्वड इनटू अ नेशनवाइड मूवमेंट दैट ट्रांसफॉर्म्स examinations into opportunities for self-expression and growth. Through personal interactions, Prime Minister Narendra Modi addresses key challenges such as time management, digital distractions, mindfulness and emotional resilience, providing practical guidance and motivation to students, parents and teachers alike. Yes, Karishma, it is a movement that is driven by Prime Minister Narendra Modi's efforts to bring together the students, parents and teachers, as we said, and the society also, to foster an environment where the unique individuality of each child is celebrated. It is encouraged and allowed to express itself fully in a wholesome way. Inspiring this movement is Prime Minister Narendra Modi's path-breaking best-selling book, Exam Warriors. And through this book, the Prime Minister outlined a refreshing approach to education. Knowledge and holistic development of students are given primary importance. The Prime Minister urges everyone to put exams in the right perspective rather than making it a life and death situation punctuated by undue stress and pressure.
और यह एक वार्षिक संवाद है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से सीधे जुड़ते हैं, न केवल परीक्षा के बारे में बल्कि अंकों से परे जीवन के बारे में भी बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किया गया परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक कार्यक्रम से कहीं बढ़कर यह एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है जो छात्रों को परीक्षाओं की तैयारी और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के तरीके को नए सिरे से परिभाषित करता है।
You know, every year, thousands of students like us wait eagerly for this session. And why not? It's like having a heart-to-heart with someone who is inspiration to all of us. Let's put a spotlight on how Pariksha Pe Charcha helps students in the stressful situation. The first one is, it reduces exam stress. Prime Minister Modi uses real-life examples and humor to tell us not to fear exams because exams are just a part of life, not the end of it.
और इसके साथ ही यह हमें दूसरों से नहीं बल्कि खुद से प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे हमारी पढ़ाई के प्रति हमारी सोच में बहुत बड़ा बदलाव आता है। प्रधानमंत्री ने बार-बार समय प्रबंधन के सुझाव, ध्यान भटकने से बचने के तरीके और बेहतर याददाश्त के तरीके भी बताए हैं। और इससे भी बढ़कर वह हमें असफलता से न डरने और इसे सफलता की सीढ़ी मानने की सलाह देते हैं। और जब हम शो की बात करते हैं तो इसमें माता-पिता और शिक्षक भी शामिल होते हैं।
Yes, they learn how to support students emotionally and not just academically. Yes, we should build a healthy environment at school and at home, one where students feel supported and not pressured. And finally, it connects us. Students from every corner of India come together, ask questions, share their doubts and get inspired.
तो श्रोताओं, परीक्षा पे चर्चा 2025 में 7 ज्ञानवर्धक एपिसोड दिखाए गए जिनमें विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां छात्रों को जीवन और शिक्षा के जरूरी पहलुओं पर मार्गदर्शन देने के लिए एक साथ आई। हर एपिसोड में विभिन्न प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई, जैसे खेल, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और यूपीएससी, आईआईटी, जेईई और अन्य विषयों के टॉपर्स की सफलता की कहानियां भी शामिल की गई।
एंड नॉट ओनली दिस, पीएम मोदी गेव टिप्स टू स्टूडेंट्स ऑन मास्टरिंग प्रेशर. Acknowledging that low grades often create a tense environment at home, he advised students to prepare without stressing over this pressure and to keep challenging themselves.
Batsman us pressure ki parwah nahi karta.
Yes sir.
Uska pura dhyan us ball pe hota. Agar aap bhi is pressure ko man mein na lete hue apna dhyan आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते।
प्रधानमंत्री ने पोषण और स्वास्थ्य के महत्व पर भी प्रकाश डाला और छात्रों को स्वस्थ रहने के लिए बाजरा और सब्जियां खाने की सलाह दी। उन्होंने ये भी बताया कि नींद पोषण पर निर्भर करती है और इस बात पर भी जोर दिया कि चिकित्सा विज्ञान भी नींद के महत्व को समझता है। उन्होंने छात्रों को सुबह की धूप में समय बिताने के लिए प्रोत्साहित किया।
एब्सेंट ऑफ इलनेस डज नॉट मीन वी आर हेल्दी। नींद पूरी आती है कि नहीं आती है, इसका भी पोषण से लेना देना है। या ज्यादा नींद आ जाती है तो पोषण में शरीर के वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है। और इन दिनों तो पूरा मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है, कितने घंटे सोता है, ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं।
And now here is something motivational for our listeners from the 2025 edition. The toppers from prestigious exams like UPSC, IITG, CBSE and ICSE shared their success stories in Pariksha Pe Charcha 2025. The board exam toppers said that during the exams, the students cannot retain all the information in their minds, so it is helpful to focus on specific topics that are frequently asked in exams. They also ask students to revisit previous year's question papers.
We cannot attain all of the information in our mind. Some specific topics jo hai, jo exam mein baar baar poochte hai. It's also good to revise the previous year questions and specifically target those specific topics first. And then you can focus on the later topics again.
सीबीएसई टॉपर 2022-23 राधिका सिंगल ने कहा कि पाठ्येतर गतिविधियां भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है.
एंड इन द एंड वी कैन ओनली से व्हाट बिगन एज अ डायलॉग बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द स्टूडेंट्स हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग रेजिलियंस फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड नर्चरिंग लीडरशिप. इट एक्टिवली इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट स्टूडेंट्स बट ऑल्सो पेरेंट्स एंड टीचर्स इन मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस अबाउट education and well-being. From a one-time initiative to a collective mindset, Pariksha Pe Charcha continues to empower the next generation with confidence and clarity.
तो परीक्षा पे चर्चा 2025 की सफलता एक सामूहिक उपलब्धि है और इससे सभी हितधारकों शैक्षणिक संस्थानों और नागरिकों का योगदान जुड़ा हुआ है. सहभागी शासन और समग्र शिक्षा को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी अटल है.
राइट, विद ईच पासिंग ईयर परीक्षा पे चर्चा रीइन्फोर्सेस द मैसेज दैट एग्जाम्स आर नॉट द एंड बट अ बिगिनिंग.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
एंड लेट्स टेक यू ऑल टू जम्मू फर्स्ट. द यूनियन गवर्नमेंट ऑन द 5th of August 2019 रिवोक्ड द स्पेशल स्टेटस और ऑटोनॉमी ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू जम्मू एंड कश्मीर. फॉलोइंग द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 द पार्लियामेंट पास द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019. This act bifurcated the state into two union territories, namely Jammu and Kashmir with a legislative assembly and Ladakh without legislative assembly. The abrogation removed the special status granted to Jammu and Kashmir by the constitution. We have a report.
Today is the 6th anniversary of revocation of Article 370 on 5th August 2019. The abrogation of Article 370 under the leadership of Prime Minister Narendra Modi marked the beginning of a new chapter for Jammu and Kashmir. Since then, the region has witnessed progress, peace and inclusion with many initiatives launched for the first time ever. The Udhampur-Srinagar-Baramulla Railway Link Project has connected Kashmir to the Indian Railways network for the first time ever. For the first time, saffron, sunopis, willow cricket bats, cherries and honey from the valley are making their mark in international markets. In 2024, Jammu and Kashmir celebrated Constitution Day for the first time in 74 years. The first ever Khelo India Winter Games were held in Gulmarg in North Kashmir's Baramulla district, marking the first major sporting event in the valley. A new era of sports, youth engagement and national integration began from the snow-covered slopes of Jammu and Kashmir. After the abrogation of Article 370, land, jobs and scholarships in Jammu and Kashmir are now accessible to all eligible citizens, not just permanent residents. More than 83,000 individuals from outside the region have been granted domicile certificates. Since 2019, Jammu and Kashmir has attracted over 10,500 crore in investments, marking a sharp shift towards industrial growth and global investor confidence. From international investments to retail expansions, the region is building a robust and inclusive economy. In 2024, Jammu and Kashmir recorded its highest ever tourist footfall with over 2 crore 35 lakh tourists. The numbers reflect the region's rising profile as a global destination known for peace, natural beauty and cultural richness. For Parikrama, Tariq Rathar, Akashwani News, Srinagar.
अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में निर्माण कार्य अंतिम चरण में है. मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि ऑडिटोरियम और म्यूजियम यह दो कार्य 2026 के मध्य तक पूरे होंगे. बाकी सभी कार्य दिसंबर 2025 तक पूरे हो जाएंगे. मंदिर में फसाद लाइट का काम भी जल्द पूरा हो जाएगा. वहीं रामलला अब सोने के साथ डायमंड के आभूषण भी धारण करेंगे.
अयोध्या स्थित श्री रामलला मंदिर अपनी पूर्ण भव्यता और दिव्यता को जल्द ही प्राप्त कर लेगा. निर्माण कार्य अपनी पूर्णता की ओर है और इसके साथ ही मंदिर में आने वाले भक्तों की सुविधा और उनके अनुभव को यादगार बनाने के लिए कुछ निर्माण और शामिल किए गए हैं. राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नीपेन मिश्र ने जानकारी दी है कि ऑडिटोरियम और म्यूजियम ये दो कार्य 2026 के मध्य तक पूर्ण होंगे, बाकी सभी कार्य दिसंबर 2025 तक पूर्ण हो जाएंगे। पूरे मंदिर में जो स्वर्ण के कार्य होने थे वो सभी पूर्ण हो चुके हैं। शेषावतार मंदिर के पास पुण्य आत्माओं का एक स्मारक बनाया जाएगा जो लगभग 11 मीटर ऊंचा होगा।
यह भी लक्ष्य है कि जो दिसंबर 2025 की हम लोगों ने समय सीमा निर्धारित की है उसके ही अंतर्गत इसे भी पूर्ण कर दिया जाए। केवल दो कार्य परिसर में एक ऑडिटोरियम जो बन रहा है वह 2026 के प्रथम 6 माह के अंतर्गत पूर्ण होगा और दूसरा जो म्यूजियम उसका बाकी सभी कार्य दिसंबर 2025 तक पूर्ण कर दिया जाए।
वही रामलला के आभूषणों में सोने के साथ अब डायमंड भी जुड़ेगा जिससे आभा और अलौकिक होगी।
बम्बई के एक व्यापारी जो डायमंड में व्यापार करते वो चाहते हैं कि रामलला का एक पूरा जो आभूषण है उनको वो विशेष डायमंड में बनाकर और वो अपना योगदान कर, ये उनके विश्वास पे श्रद्धा पर निर्भर है। लेकिन उन्होंने यह अनुमति अवश्य चाही कि उनके लोग जो इसको बनाएंगे उनको नाप जोख करने के लिए अनुमति कर दी जाए, जो अनुमति दे दी।
राम मंदिर को सुसज्जित करने वाली और रात में भी इसे आकर्षक बनाने वाली फसाद लाइट का भी टेंडर हो चुका है। वहीं 15 अगस्त के बाद राम मंदिर की आधुनिक तकनीक के जरिए बाउंड्री वॉल का कार्य भी शुरू हो जाएगा। इन निर्माण कार्यों के बाद मंदिर न केवल अपनी संपूर्णता को प्राप्त करेगा बल्कि अपनी अलौकिकता दिव्यता से भक्तों को और ज्यादा मंत्रमुग्ध करेगा। परिक्रमा के लिए शैलेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
एंड नाउ ऑल द सिस्टर्स आर वेटिंग फॉर द गुड फेस्टिवल, द इंटरेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन। एंड एज रक्षाबंधन अप्रोचेस ऑन 9th ऑफ ऑगस्ट, वेमेन फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन कटक इन ओडिशा आर मेकिंग द फेस्टिवल मोर मीनिंगफुल एंड सस्टेनेबल इन अ यूनिक इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय द ओडिशा रूरल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग सोसाइटी। दीज वेमेन आर क्राफ्टिंग ब्यूटिफुल एंड इको फ्रेंडली राखीज यूजिंग वेस्ट एंड नेचुरल मटीरियल सच एज काउडंग, पाम लीव्स, बैम्बू एंड थ्रेड। We have a report on this.
This initiative is helping rural women generate income, develop skills and gain confidence as they contribute to their households and local economy. The market response has been encouraging with many customers appreciating the blend of tradition and sustainability. Each Rakhi carries a story of creativity, resilience and the spirit of self-reliance. By turning simple waste materials into valuable products, these women are setting an inspiring example of how local innovation and community support can transform lives. Speaking to Akashwani Samachar, Joint CEO of Ormas, Vipin Raut says,
These rakhis are capturing attention and appreciation in local market. Women entrepreneurs from blocks such as Salepur, Dampoda, Kattak Sadar and others have actively embraced rakhi making as a livelihood opportunity. Supported and facilitated by Ormas, these GSSs are producing rakhis in large quantities to meet growing demand. Peer producer groups Rudrani PG, Kattak Sadar, Ma Siddhavari PG, and my Chachika PG from Dampoda block. Kattak are involved in making beautiful rakhi from bamboo and biodegradable material and selling. The response from the market has been overwhelmingly positive.
As the rakhis ties bond of love between siblings, the initiative is also tying together the ideas of empowerment, environment and enterprise. For Parikrama, this is Itishri Singh Rathor.
और अनुजा, रक्षाबंधन के साथ ही गणेश चतुर्थी का भी लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है और मध्य प्रदेश में तो इस बार गणेश चतुर्थी का पर्व पर्यावरण संरक्षण का एक बड़ा संदेश लेकर आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश व्यापी माटी गणेश सिद्ध गणेश अभियान की कल से शुरुआत की है जिसका उद्देश्य मिट्टी के गणेश प्रतिमाओं की स्थापना करने के लिए जन जागरूकता फैलाना है।
जन अभियान परिषद द्वारा संचालित होने वाले इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और गणेश चतुर्थी पर मिट्टी से बनी प्रतिमाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। अभियान के तहत नर्मदा समग्र संस्थान प्रशिक्षण के माध्यम से सभी 313 विकास खंड में महिलाओं को ट्रेनिंग देगा। ये महिलाएं अपने गाँव में स्थानीय महिलाओं को प्रेरित कर मिट्टी की 10 लाख गणेश प्रतिमाओं का निर्माण कराएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस अभियान के गीत और पोस्टर का विमोचन करते हुए इस प्रयास के लिए सभी को बधाई दी है।
भगवान गणेश की प्रतिमा मिट्टी की बने और लोग प्लास्टिक का पेरिस से दूर जाए और जन अभियान परिषद नर्मदा समुद्र के बीच में एक एमओयू हुआ है। प्रदेश के अंदर 10 लाख से ज्यादा गणेश प्रतिमा बनाकर के लिए बड़ा काम कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने इस अभियान के लिए एक संकल्प गीत भी जारी किया है जो प्रदेश के घर घर में जल प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण से जुड़ने का संदेश दे रहा है।
माटी की खुशबू बढ़े, बप्पा की मूरत कहे, घर घर में खुशियाँ आए, उत्साह उमंग मन में लाए, जब भी विराजे।
परिक्रमा के लिए आकाशवाणी भोपाल से मैं प्रशांत शर्मा।
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
यस करिश्मा, द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अनाउंस द डेट्स ऑफ फोर्थ सब जूनियर अंडर 15 बॉयज एंड गर्ल्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स व्हिच विल बी हेल्ड फ्रॉम अगस्त 7 टू 13 इन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। द इवेंट विल सी द पार्टिसिपेशन ऑफ ओवर 700 यंग बॉक्सर्स इंक्लूडिंग 400 बॉयज एंड 300 गर्ल्स एज्ड बिटवीन 13 एंड 14 हु विल कम्पीट अक्रॉस 15 वेट कैटेगरीज। एट द रीसेंट Asian Under-15 and Under-17 Championships, Indian boxers bagged 43 medals and finished second overall.
और जाने माने टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने सिनसिनाटी ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। आयोजकों के अनुसार जुलाई में विंबलडन के सेमीफाइनल में हार के बाद जोकोविच पहली बार किसी टूर्नामेंट में खेलने वाले थे। उन्होंने गैर चिकित्सीय कारणों का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया है और अब अमरीकी ओपन के मुख्य ड्रॉ के मुकाबले 24 अगस्त से शुरू होंगे।
And now over to the market news of the day. Benchmark domestic equity indices fell amid investors' caution regarding President Trump's renewed tariff threat over India's imports of Russian oil. All eyes are also on the outcome of RBI's monetary policy. Sensex shed 308 points or 0.38% to close at 80,710. Nifty fell 73 points or 0.3% to settle at 24,649. In the global crude oil market, Brent crude was trading around 0.97% down at $68.09 per barrel, and WTI crude was also trading 1.07% down at $65.58 per barrel when reports last came in.
और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
We remember the freedom fighter Gopinath Bordoloi, who died on the 5th of August 1950.
Born on 6th June 1890 at Raha, Assam, Bordoloi was a lawyer by profession. He actively participated in the non-cooperation movement and was jailed in 1922. Bordoloi was elected leader of the opposition in the Assam Legislative Assembly in 1936. 2 years later, in 1938, he became the Premier of Assam. However, after the outbreak of World War II, he and his cabinet resigned in 1939. After resigning from the post of Chief Minister of Assam, Bordoloi was jailed twice. After his release in 1944, he was once again elected as the Premier of Assam in 1946.
Bordoloi served as a member of the Constituent Assembly from Assam. Bordoloi became the first Chief Minister of Assam in independent India. He implemented progressive industrial and educational policies and was also responsible for establishing a number of universities, including the Guwahati University. Bordoloi was conferred the title Lok Priya, meaning loved by all.
The great nationalist Gopinath Bordoloi passed away on August 5, 1950, while still in office. He was posthumously awarded the Bharat Ratna in 1999 for his work in public affairs. In 2002, a statue of Bordoloi was unveiled in Parliament.
We also remember nationalist Neelakant Das, who was born on the 5th of August 1884 at Sri Ramachandrapur village in the district of Puri, Odisha. Along with Utkalmani Gopabandhu Das, Acharya Harihar Das, Pandit Godaparisha Mishra and Pandit Kripa Sindhu Mishra, Neelakant Das is one of the Panch Sakha of Satyavadi era, who resolved to bring renaissance in the field of education and culture in Orissa and ensure its prosperity.
Neelakant rejected an offer of a lucrative job by the British government and preferred to serve as the headmaster of Satyabadi High School. Later, he worked as a professor in Odia and philosophy, but relinquished his service in order to join the non-cooperation movement. He was elected as a working member of the Utkal Pradesh Congress Committee and also member of the All India Congress Committee. He edited a newspaper titled Seba from Sambalpur. He was arrested in 1922 for his participation in the freedom struggle and imprisoned in Hazaribagh jail for 6 months.
In 1923, Neelakantha was elected as a member of the Central Assembly. He participated in the Shimla Conference in 1926. In 1928, after the death of Pandit Gopabandhu, he took up the leadership of Congress in Odisha. During the civil disobedience movement, he participated in Salt Satyagraha, for which he was imprisoned for 6 months again. He started the movement for the upliftment of the depressed classes and edited a monthly Oriya journal titled Nababharat.
Neelakantha Das wrote an excellent commentary on Gita, and his epics are considered as masterpieces of Odia language. He helped establish the Utkal University.
After independence, Neelakantha was elected to Orissa Legislative Assembly in 1951 and 1957. One of the architects of modern Odisha, Neelakantha Das breathed his last on the 6th of November 1967. We salute the great patriot.
We also remember Martyr Hargovind Lalji, a resident of Mumbai who took part in the Tilak Day celebrations during the civil disobedience movement at Bori Bandar, Mumbai. He was badly wounded in the police lathi charge on the procession and died on the 5th of August 1930.
And moving on in this segment, perhaps no cartoon character in the country holds greater endurance than the man with the blazing red turban called Chacha Chaudhary, a household name which endeared himself to both children and grown-ups alike, giving a homegrown comic character to Indians created by Pran Kumar Sharma, the cartoonist. It is his death anniversary today. Better known as Pran, he was an Indian cartoonist best known as the creator of not only Chacha Chaudhary in 1971, but also created other characters like Srimati Ji, Pinku, Billu, Raman and Channi Chachi.
जी हाँ, आज हम याद कर रहे हैं उस कलाकार को जिसने बच्चों की दुनिया को हंसी, बुद्धिमत्ता और रोमांच से भर दिया। और प्राण कुमार शर्मा, हिंदी कॉमिक्स की दुनिया में उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो शायद ही किसी और को मिला हो। उनकी कल्पना से जन्मा पात्र चाचा चौधरी, जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था, आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।
And next, we pay tribute to Lala Amarnath on his death anniversary, the father of Indian cricket, a fearless pioneer who broke boundaries on and off the field. He scored the first century for India, led the team to victory in the first series against Pakistan in Pakistan. He became independent India's first test captain to lead the team on a tour of Australia in 1947-48. The legendary cricketer went on to captain India in 15 matches.
जी हाँ, लाला अमरनाथ स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट शतक वीर थे और एक ऐसी उपलब्धि जो उन्हें भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अमर बना गई।
एंड देन द नेक्स्ट personality is Shiv Mangal Singh Suman, who was a prominent Hindi poet and academician born on 5th of August 1915 in Changarpur, Unnao district in Uttar Pradesh. He was a leading figure in progressive Hindi literature known for his powerful verses on freedom, patriotism and self-respect, according to a newspaper which was very popular in those days. He passed away in 2002 and he was honoured with the Padma Bhushan by the Government of India in 1999.
तो सुमन जी ना सिर्फ कवि थे बल्कि विचारों के क्रांतिकारी भी थे। उनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति, जीवन दर्शन और आशा की चमक साफ झलकती थी। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में मिट्टी की बारात, प्रलय सृजन और वीणा शामिल है। मिट्टी की बारात के लिए उन्हें साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार भी मिला था।
एंड वी ऑल्सो पे ट्रिब्यूट टू उत्तरा बाउकर। She is having her death anniversary today, and I beg your pardon, it is her birth anniversary today. She was an Indian stage, film and television actress. She played several notable roles such as Padmavati in Mukhyamantri, Desdemona in Shakespeare's Othello, the mother in playwright Girish Karnad's Tughlaq, the notch girl in Chote Sayyad Bade Sayyad, and a performer, Baukar, excelled in Rinal Sen's Ek Din Achanak as the wife of the professor who does not return home. It fetched her the National Award for Best Supporting Actress. She was also lauded for her work in Govind Nihlani's Tamas.
तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, और इसी के साथ अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर. नमस्कार.